ओम शांति। कल की मुरली से एक प्रश्न है सभी से, विनाश होगा, पानी नहीं मिलेगा पीने को, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, तब तुम क्या करोगे? कौन उत्तर देगा? कल की मुरली से है, क्या होगा? सुख शांति के, भूख लगी है, सुख शांति के वाइब्रेशंस कहाँ से? पानी नहीं है, भोजन नहीं है, सब्जियां खराब हो गई हैं, अन्न सड़ जाएगा, क्या करोगे? सुशील उत्तर देगा, ठीक? हाँ ठीक बोल रहे, बोलो अब पूरा बोल दो। सहन शक्ति से बैठ के योग लगाएंगे तो क्या होगा? पेट भर जाएगा, ऐसे होगा। सबको इन परिस्थितियों का सामना करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना भाई, थोड़ा सा। सबको इन परिस्थितियों का सामना करना है। अब तो कम हो गया देश में, थोड़ी शांति है, नहीं तो कहीं भी कर्फ्यू हो जाता है, न दूध आता, कभी कभी पानी भी नहीं आता, सब्जी बेचने वाले नहीं आएंगे, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। और आगे चलकर तो लंबे चौड़े कर्फ्यू लग जाएंगे, लंबे चौड़े। तो क्या होगा? याद करो कल की मुरली, उत्तर है, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो शास्त्रों में दिखाया है, बिल्ली के बच्चे मटके में रह गए थे, मटका चढ़ा दिया गया था गर्म होने के लिए, जैसे ईंटें पकती है ना, ऐसे ही मटके भी पकते हैं, तो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे। प्रह्लाद की कहानियों में है ये। प्रह्लाद ने देखा तो उसको भगवान पर विश्वास हो गया। तो जब सारे संसार में आग लगेगी, बाबा के बच्चे भी बोलो सेफ रहेंगे। सेफ तो रहेंगे, पर भोजन का क्या होगा? सेफ तो रहे लेकिन रहे भूखे, बोलो। उसका भी उत्तर दिया बाबा ने, वो मैं आपको पक्का कराना चाहता हूँ। कल इसका भी उत्तर था और 74 की मुरली में उत्तर था। निश्चय के अलावा कुछ कहा था, दाल रोटी मिलेगी, सब्जी नहीं, दाल रोटी मिलेगी। जिनको सब्जी चाहिए वो क्या करेंगे? पकोड़े चाहिए तो क्या करेंगे? रहस्य ये है, याद करो कल की मुरली। अब सुरुई बाबा ने की थी, मुरबी बच्चे जो योग युक्त हैं और युक्ति युक्त हैं, जो लंबे काल से योग युक्त हैं, उन्हें बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। और जिनके पास सर्व शक्तियां होंगी, प्रकृति उनकी दासी रहेगी, अर्थात उन्हें सब कुछ देगी। वो आत्माएं हो गई प्रकृति के मालिक। तो प्रकृति अपने मालिकों को कोई भी कष्ट नहीं होने देगी। अब याद करो, किसी भी शक्ति की कमी होगी तो वो कमी क्या बन जाएगी? वही कमी परीक्षा बनकर सामने आ जाएगी। सहन शक्ति नहीं है तो कोई गाली देकर चला जाएगा और हम परेशान रहेंगे, योग टूटा और प्रकृति दासी नहीं रही। फिर फीलिंग हो गई हमें तो परीक्षा में हम फेल हो गए, और हमारे पास सहन शक्ति है, कोई कुछ भी कह के चला गया, हमने मुस्कुरा के पूरा कर दिया, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहे, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। ये बात बाबा ने एक बार और कही थी ऐसे ही। ये हॉल भी नहीं था तब, छोटा ही हॉल था, तो भाइयों की भट्टी चल रही थी, तो उसमें यही प्रश्न पूछा, अंत में भोजन नहीं मिलेगा तुम क्या करोगे? किसी ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए, पहले से स्टॉक रखेंगे। किसी ने कहा अभी से भूखा रहने की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। किसी ने कहा सूक्ष्म वतन में जाके सूबी रस पी आएंगे। ये उत्तर थे। फिर बाबा ने यही उत्तर दिया, जिनके पास सर्व शक्तियां होंगी उन्हें सब कुछ मिलता रहेगा, अर्थात जो योग युक्त होंगे उन्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी, और जो शिकायत ही करते रहेंगे इसे तो मिल रहा मुझे नहीं मिल रहा, तो उसे क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो योग युक्त हैं। हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम योग युक्त नहीं हैं, हम सर्व शक्तियों से संपन्न नहीं है। वहाँ किसी की ईर्ष्या किसी की शिकायत पे काम ही नहीं करेंगी। जिसकी जो स्थिति प्रकृति से उन्हें वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें बाबा कुछ करता है ये नहीं, इसलिए किसी को भी ये शिकायत नहीं करनी है कि बाबा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक भाई आया आज सवेरे मिलने में, शांतिवन में था, कहा मेरी युगल को ज्वाइंट पेन हो गया है, घुटना दर्द कंधे दर्द ये सब, ये ज्वाइंट पेन हो गया है, दवाई कोई नहीं। एलोपैथी डॉक्टरों ने दवाई खिला खिला के आखिर कह दिया इसकी दवाई नहीं होती, बहुत खिलाई नहीं ठीक हुई, तो बेचारा परेशान। तो माताजी भगवान से नाराज, बाबा मेरे लिए क्या किया? उससे कोई पूछे तुमने बाबा के लिए क्या किया? ये मैंने उस भाई को कहा तुम अपने युगल से पूछना, वो भी थी लेकिन आई नहीं, भट्टी में थी नीचे। मैंने कहा उससे पूछना उसने बाबा के लिए क्या किया है। जो कुछ हमने बाबा के लिए किया, अगर हम सच्चे दिल से कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ तेरा, तो बाबा भी कहेगा मेरा, बोलो माताएं नहीं बोल रही? और अगर हम कहते बाबा पहले हमारे बच्चों का फिर बचा कुचा तेरा, माताएं कहती हैं ऐसे ही, कन्याएं खुश हो रही हैं, आपकी माताएं ऐसे ही कहती हैं, पहले हमारे बच्चों का पीछे जो बचेगा वो हिस्सा तुम्हारा, तो बाबा भी क्या कहेगा? बोलो पहले अपने मुर्बी बच्चों को दे दूं, फिर जो बचेगा वो तुम्हारा। तो लोग बाबा की बहुत शिकायत करेंगे, भगवान की भी शिकायत करते हैं ना उसके बच्चे, एक भगवान को शिकायत करते हैं दूसरे उसकी भी शिकायत करते हैं, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए तो बहुत कुछ कर दिया, हमारा गुरु ही अच्छा था वो मदद तो कर देता था, बाबा तो सुनता ही नहीं। ठीक है, कंप्लेंट नहीं, इसमें बाबा की कोई बात ही नहीं, ये सब अपनी स्थिति पर निर्भर है, अपने कर्मों पर निर्भर है। हमने ही यदि दूसरों को सुख नहीं दिया तो हम सुखों की कामना कैसे कर सकते हैं? पर बहुतों को ये पता नहीं चलता कि वो भी दूसरों को दुख देते हैं। कैसे दिया जाता है दुख दूसरों को, बोलो कुमार बताएंगे? हैं? सबसे ज्यादा बोल से, बोल बोल। एक भाई बेचारा शांतिवन का बहुत परेशान मेरे पास आया कि फलाना भाई मेरे से बहुत नाराज हो गया है, 6 मास हो गए, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की मानता ही नहीं है, रूस गया है, इससे मेरे को मजा नहीं आ रहा है, उसे देखता हूँ तो खुशी गुम हो जाती है। परसों की बात है, मैंने उसको एक दो बातें बताई, कहा ये तो सब मैंने कर ली, वो तो राजी होता ही नहीं, कहता तुम अच्छे नहीं हो। मैंने कहा तुमने क्या किया था? कहा मैंने उसको एक बार खराब बोल दिया था। हाँ, वो इतना नाराज हुआ कि 6 मास से उसके पास ही नहीं आता, बात ही नहीं करता उससे, अब इसको परेशानी हो रही है। तो सबसे ज्यादा कठिनाइयां संगठनों में बोल के द्वारा होती हैं। हम इससे बचेंगे, उसमें भी जो हमारा ये महान आत्माओं का संगठन है, महान आत्माओं का है या नहीं, सब यहाँ खुशी लेने आए हैं, सब यहाँ भाग्य बनाने आए हैं, सब यहाँ शांति के लिए आए हैं, और हमारे बोल उनको अशांत कर दें, उनकी खुशी छीन लें, तो उनके मन से निकली हुई बद्दुआएं हमें सोने नहीं देंगी, फिर परेशानी हो जाएगी। इसलिए एक बहुत अच्छी चीज याद रखनी है और अपने को चेंज करना है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। बिल्कुल अपना लें ये बात को, बुद्धि में समा लें, दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी मेरे व्यक्तिगत सोचेंगे, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरे स्वयं के कर्म हैं। नहीं, अच्छी बात सुनाने की शक्ति, उसमें भी पावर है तो पूरा प्रभाव पड़ता है। पीछे वाले बोलो, ये तो 8 शक्तियों में आ गई। बोलो पीछे वाले, श्रोता गणी है सब। पीछे वाले बोलो, माताएं वो गुण हो गए, गुण मनन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, मनन शक्ति, ये भी शक्ति है ना। यज्ञ सेवा का बल, अब इसको बल ले ले, बल भी शक्ति है ना। यज्ञ सेवा भी हमें शक्ति प्रदान करती है। सोचो बोल, प्रेम की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, एडजस्ट होने की शक्ति, ये भी ठीक है। दुआओं में भी शक्ति है, ये भी ठीक बोला। तो ये शक्तियां हैं हमारे पास, ये हमारे पास हैं सब, नहीं है तो इन्हें हमें बढ़ाना है, दुआएं देकर उसकी शक्ति को अनुभव करना है, दूसरों को शांति देकर खुद शांत में रहकर उस बल को अनुभव करना है। अगर हम मौन रख लें एक हफ्ते के लिए तो हमें पता चल जाएगा मौन में कितनी बड़ी शक्ति है। मैं सोच रहा था कल, एक व्यक्ति है हमारे बीच में जिसने जीवन में एक ही बार मौन रखा है 7 दिन का, और अपना अनुभव लिखा था बहुत। वो बहुत बोलता था, अब भी ज्यादा ही बोलता है, लेकिन तब उसने 7 दिन का मौन रखा था, बहुत साल पहले की बात है, 80 के पहले की, और उसने अपना सुंदर अनुभव लिखा था कैसे उसको डीप रियलाइजेशन हुए हैं मौन से। क्योंकि जब मनुष्य मौन में रहता है तो वो अपने अंदर झांकता है, जब बोल रहा है तो बाह्य मुखी है, वो दूसरों को देख रहा है, अपने को नहीं देखता है। तो हम सब इन शक्तियों को बढ़ाते चले तो विनाश काल में हमें सुखी रहना है। अभी से ध्यान दें, एक दो बात और मैं सबके ध्यान पे देना चाहता हूँ। प्रकृति जो हमें सब कुछ प्रदान कर रही है, इसको हम क्या करें, इसको हम वाइब्रेशंस भी दें और इसको हम सम्मान भी दें। ऐसा मान लें ये हमारी माँ है जिसने हमारी पालना की है, जन्म जन्म हमें शरीर दिए हैं, पालना की है, इसको हम सम्मान दें, इसको हम थैंक्स भी दें सच्चे दिल से, और अब रिटर्न में इसको वाइब्रेशंस भी दें। ये तीनों चीजें हमें करनी है। छोटा सा उदाहरण ले ले, प्रकृति अगर कह दे मैं 1 मिनट के लिए अपनी हवा बंद कर लेती हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगी, केवल 1 मिनट हवा बंद, तो क्या होगा संसार का हाल, सारी धरती शमशान बन जाए 1 मिनट में ही। 1 मिनट तक जीना सहज काम नहीं, सबके बस का नहीं है, 0.5 मिनट तक जी सकते हैं, उसके बाद दम घुटने लगेगा। प्रकृति ने हम पर कितने एहसान किए हुए हैं, पानी न हो जानते हैं सब कितनी परेशानी हो जाती है। तो ये कष्ट संसार में भी आएंगे लेकिन हमारे पास नहीं आएंगे, हम अभी से रोज एक बार प्रकृति को थैंक्स दें, सम्मान अर्पित करें अपना, तुमने हमारी बहुत पालना की है, और उसको वाइब्रेशंस दें। कौन से वाइब्रेशंस प्रकृति को चाहिए? पवित्रता के। प्रकृति की मूल शक्ति पवित्रता है। यही शक्ति नष्ट हो गई ना मनुष्य की, तो मनुष्य से उसे अपवित्र वाइब्रेशंस जाने लगे, जिससे उसमें तम प्रधानता आ गई और सब कुछ दूषित हो गया। अब हम उसे प्योर वाइब्रेशंस देंगे। बहुत अच्छा तरीका सभी अपनाया करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में हूँ। आकाश में जाकर प्रकृति को सकाश देना बहुत इजी रहेगा। हम आकाश में, हमारे चारों ओर देखो क्या क्या है। आकाश, वायु, सूक्ष्म रूप से चार ओर फैली हुई अग्नि, जल कण, चार तत्व ऊपर हैं आकाश में, चौथा धरती नीचे। तो आकाश में जाकर हम चारों को वाइब्रेशंस देंगे, अभ्यास करेंगे। बाबा से पवित्र किरणें हमें आ रही हैं और हमसे चारों ओर फैल रही हैं। सागर को भी दे सकते हैं ऊपर से ही, सागर को देखो दूर सागर। पृथ्वी को भी ऊपर से ही दें तो प्रकृति हमारा एहसान मंद हो जाएगी, और तब ये रिटर्न में हमारी बहुत पालना करेगी। प्रकृति में जो संहार भी होगा, प्रकृति बहुत संहार करेगी। लोग भी मानते हैं कि प्रकृति कुपित होती जा रही है, क्रोधित, और ये मनुष्य से बदला लेगी, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट किया है, उसके सौंदर्य को समाप्त किया है। आकाश में क्या क्या फैल गया है गंदगी, अगर आकाश का एक सूक्ष्म दूरबीन से फोटो लिया जाए, देखा जाए दूरबीन से, तो गंदगी फैली हुई है, स्वच्छ नजर नहीं आएगा, जो हमारे नाक से सांस के जरिए हमारे शरीर में जाता रहता है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी दूषित हो गया है, सब जानते हैं, बीमारियों का मुख्य कारण बन गया है दूषित पानी। चलो अब प्रकृति को सकाश देंगे। सब फरिश्ते बनकर अंतरिक्ष में चलते हैं, बाबा से पवित्र किरणें लेकर चारों ओर फैलाएं। हमें अपनी शक्तियां बढ़ानी हैं। कैसे, किन बातों का ध्यान रखें जो शक्तियां नष्ट न हो, और क्या अभ्यास करें जो शक्तियां बढ़ती चले। ध्यान किन चीजों का रखें? व्यर्थ पहले संकल्प, व्यर्थ संकल्प न चलें। हमारे हाथ में है या नहीं, ऐसे कह देना तो सहज है, व्यर्थ संकल्प न चलें। लेकिन प्रैक्टिकल हाल क्या है? चलते हैं हम, चलाते हैं या आप ही चलते हैं? आप ही चलते हैं। सोच के बताओ, हम चलाते हैं या आप ही चलते हैं? कुछ आप ही चलते हैं, कुछ को हम चलाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम चलाते हैं, पर देखो अनुमान से, ईर्ष्या से, परचिंतन से, ये हम चलाते हैं, और कुछ अंदर में भरा हुआ है पूर्व जन्मों का, उसके इफेक्ट से कुछ संकल्प स्वतः ही चलते रहते हैं। हम पहला कंट्रोल करेंगे कि जो हमारे हाथ में है उन्हें ठीक करें, अनुमान नहीं। बैठे बैठे ही सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पता ही नहीं, पता नहीं सोच सोच के किधर चले गए, सैर कराए दिल्ली की, न जाने कहाँ कहाँ की सैर कराए, पता ही नहीं चला। अनुमान, कल मेरे साथ ऐसा न हो जाए, कन्याओं को ज्यादा होता है, पता नहीं ज्ञान में चल पाएंगे या नहीं, घर से निकाल न दिया जाए हमें, क्या करेंगे, हमारे घर वाले तो मदद नहीं करते। एक कुमार का फोन आ रहा आज मुझे, वो काफी तंग कर रहा है मुझे, क्यों कर रहा है, मुझे आज धमकी दी है तुम्हें आज रात को घर से निकाल देंगे हम, या तो ब्रह्मा कुमारियों को छोड़ो नहीं तो घर से निकल जाओ। अभी भी उसका ही फोन था, मैं आया, मैंने कहा 3 मिनट बात कर लो बस, कई बार आ चुके हैं, कमजोर है, क्या करूं, निकल जाऊं क्या, निकल जाऊं तो कहां जाऊं, कहां से खाऊंगा। मैंने पूछा क्या करते हो, दुकान है मेरे पास। मैंने कहा तुम्हें बिजनेस का टैक्ट है, कहा है तो सही तो कर लो ना, पर निकलने की ताकत, फिर मेरे परिवार वाले दुखी नहीं होंगे, मम्मी बहुत दुखी होगी फिर मेरी, मैं निकल जाऊं, मैं कुमार हूं, कितने भाई बहने हैं और भी हैं, पर मां तो दुखी होगी ना। मैंने फिर फाइनली उसको कहा कि एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, या तो घर छोड़ दो या भगवान को छोड़ दो, बोलो क्या पसंद है। कि नहीं, मैं बाबा को तो नहीं छोड़ सकता पर घर भी नहीं छोड़ना चाहता। कुमारों की समस्याएं प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। अभी फिर फोन करेगा मुझे 10 बजे, कहा भाई फोन खोल लेना अपना। मैंने कहा रात को 12 बजे घर से निकाल दें तुम्हें तो अपना बोरी बिस्तर लेके चल देना, कहाँ जाऊं मैं फिर रात को 12 बजे। उसकी ये समस्या हो रही है, क्यों है ये कमजोर संकल्प। मैंने उसको अभ्यास बताया था आज सवेरे ही, मैंने पूछा अभी शाम को किया कि होता नहीं मेरे से, अब डॉक्टर दवाई दे दे बीमारी बढ़ जाए, डॉक्टर पूछे दवाई खाई कि मुझे तो खानी नहीं आती, आप ही खिला दो तो चलेगा काम, चलेगा। तो ऐसा कमजोर नहीं बनना है। ऐसे भी कितने कुमार हुए हैं, फादर ने कहा कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, अपनी अटैची उठाओ और घर से निकल जाओ, अटैची पैक की और चल दिए, बेफिक्र बादशाह, बिना कोड़ी के बादशाह, चल दिए, हो गए स्वतंत्र, पावरफुल हो गए, सेवा में चल गए। माँ बाप पीछे पीछे, अब माँ बाप कहते हैं हम पे आशीर्वाद करो भाई, तुम बहुत महान हो, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, कहाँ से आएंगी शक्ति, बाबा आप ही दे देगा, बाबा से तो आएंगी पर लेनी हमें पड़ेंगी। इसलिए पहला तरीका अपनाएंगे ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का बल, ताकि हमारे संकल्पों में बहुत मजबूती आ जाए, हम छोटी छोटी बातों से घबराएं नहीं। मैंने उसे कहा अरे भगवान मिला है तुम्हें उस पे विश्वास नहीं, घर छोड़ने से डर रहे हो, वो निकाल भी नहीं रहे, कहते अपनी पेटी बोरी बिस्तर उठाओ, सामान भी दे रहे हैं फिर भी तुम परेशान हो रहे हो, कई तो ऐसे जिन्हें कुछ नहीं देते निकल जाओ, तो भी भाग्य तो साथ है, भगवान तो साथ है या नहीं। जिसको भगवान साथ दे रहा हो, जिसे भाग्य साथ दे रहा हो, उसे संसार भी साथ देगा। इसलिए संकल्पों में दृढ़ता के लिए ज्ञान का बल चाहिए, संकल्पों का बल। इसलिए चिंतन शक्ति को बढ़ाएंगे तो आत्मिक शक्तियां बढ़ती जाएंगी। हम जितना सुंदर चिंतन कर सकते हैं संसार में और कोई नहीं कर सकता, क्यों, क्या है हमारे पास, ज्ञान का भंडार है। आप मुरली 10 मिनट पढ़ लो, चिंतन प्रारंभ हो जाएगा या नहीं, चिंतन शुरू हो जाएगा। स्वमान का अभ्यास कर लो, चिंतन महान होने लगेगा। सेवा कर दो, चिंतन महान होने लगेगा। तो पहली शक्तियों की प्राप्ति होगी चिंतन से। बाबा इसके लिए उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, कि जैसे तुम भोजन खाते हो, भोजन पचता है फिर उसके रस बनते हैं, ब्लड बन जाता है, अगर भोजन पचे नहीं तो ब्लड भी नहीं बनेगा, शक्ति भी नहीं बनेगी। ज्ञान हमने सुन लिया लेकिन पचेगा कैसे, मनन से। अगर हम मनन नहीं करते तो ज्ञान पचता नहीं, वो शक्ति में परिवर्तित नहीं होता। इसलिए ज्ञान भी उन आत्माओं को बहुत पावरफुल बना देता है जो मनन करते हैं। और मनन का तरीका, माताएं सोचती हैं हमारा तो मनन होता नहीं, सोचती हैं माताएं ऐसा? बोलो जिनका मनन नहीं होता, हाथ उठाओ, मैं विधि बताऊंगा आज, उठाओ। मुझे पता है किसी का भी नहीं होता माताओं का, हाथ क्यों नहीं उठाती? उठाओ माताएं हाथ जिसको मनन नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में समस्या आ जाए उसका मनन होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, चिंतन वही चलता रहता है, रोकने पर भी नहीं रुकता। इसका क्या अर्थ है? चिंतन शक्ति हर आत्मा के पास है, उसको चाहे पॉजिटिवली प्रयोग कर लो या निगेटिवली। अगर हम व्यर्थ में नहीं रहेंगे तो हमारा ज्ञान का चिंतन सुंदर होगा। लेकिन अगर हम व्यर्थ चिंतन में ज्यादा हैं, पर चिंतन में ज्यादा हैं, तो ज्ञान चिंतन होगा ही नहीं। मैं कराता हूँ बहुतों से, मेरे पास आते हैं बहने भी भाई भी, मैं उन्हें कहता हूँ अभी बैठकर आत्मा के बारे में बाबा ने क्या बताया है 25 बातें लिख दो। चिंतन माना कुछ नया नहीं, बाबा ने आत्मा के बारे में क्या क्या कहा है 25 बातें लिख दो। 5 बातें लिख के कलम रुक जाती है, क्या कहा आगे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? व्यर्थ चिंतन ज्यादा है, नहीं तो 25 पॉइंट एक लहर में 5 मिनट में लिख दी जाएं आत्मा के बारे में, और उससे बहुत बल प्राप्त होगा। बाबा ने आत्मा के बारे में भी हमें इतना गुह्य ज्ञान दिया है, सरल शब्दों में हंसते हंसते बच्चों को भी दे दिया, जो दर्शनों में भी नहीं है। 6 दर्शन है भारत के, जिसको पढ़कर लोग एमए की डिग्री ले लेते हैं फिलोसॉफी में, उनमें भी नहीं है वो ज्ञान कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। सबसे गहरी बात है जो संसार में किसी फिलोसोफर को, किसी विद्वान को पता नहीं है कि परम धाम में सभी धर्मों की आत्माएं, बोलो आगे, अपने अपने सेक्शन में रहती। एक धर्म की आत्मा दूसरे धर्म की आत्माओं के बीच में कूद के जा ही नहीं सकती। क्यों? जंप तो दे सकती है ना, खाली पड़ा मैदान क्या दिक्कत है? नीचे वाले कूद के ऊपर पहुंच जाएं बाबा के पास, क्या दिक्कत है? हर एक के वाइब्रेशन, हर एक का ओरा, प्रभा मंडल अलग अलग है। एक धर्म की आत्माओं में आपस में आकर्षण है, वो वहीं खींच के चली जाएंगी, या फिर वो दूसरे में जाएंगी नहीं, वहां वो आकर्षित ही नहीं होंगी। अति गुह्य ज्ञान है ये, भगवान के सिवाय, ज्ञान सागर के सिवाय ये बातें कोई नहीं सुना सकता। तो हमारे पास अति सुंदर ज्ञान है, अति गुह्य ज्ञान है, इसको याद करेंगे तो चिंतन चलता रहेगा। चिंतन का तरीका है ज्ञान को स्मरण करना, ठीक बात है ना, सहज विधि। तो सभी ज्ञान को स्मृति में रखने की प्रैक्टिस करें। मुरली चली आज की, उससे हमने ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट याद रखी, ज्यादा न रखें। स्लोगन वरदान याद रख लें, सार याद रख लें, और कोई अच्छी बात लगे वो याद रख लें। 2-3 भी याद रखेंगे तो उस पर चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। चिंतन का ये तरीका है, और दूसरा तरीका है लिखना। जैसे मैंने कहा आत्मा के बारे में इतनी पॉइंट्स लिखो, लिखने की आदत पड़ गई तो चिंतन बहुत सुंदर चलेगा। दूसरा, अब एक तो हमें ज्ञान चिंतन से बल प्राप्त करना है, दूसरा एक बल नहीं, योग बल तो है, उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, उससे तो सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। आज हम कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं, पुण्य कर्मों का बल जो आत्मा को बहुत साथ देता है। पाप कर्म समय पर धोखा देते हैं, पुण्य कर्म समय पर मित्रता निभाते हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं लोगों का। कैंसर बढ़ रहा है संसार में, हमारे हॉस्पिटल में भी कैंसर के पेशेंट आते रहते हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है। एक बहन को जब कीमोथेरेपी दी गई, ये बात 4-5 साल पहले की है, उसका हाल इतना बिगड़ गया कि सुनने में ही, अब आपको भी सुनाता हूँ कैसा लगेगा, उसको ऐसा लगा इंजेक्शन देते ही अंदर में आग जला दी गई और वो तड़प उठी और 3 दिन तक वो पूरे कमरे में लेटती रही, इधर उधर तड़पती रही 3 दिन। कितना होता है 3 दिन? 3 सेकंड नहीं, 3 दिन। बहुत समय के बाद उसकी मृत्यु हुई। 3 थी वो बहने, 2 को कीमो के इंजेक्शन दिए गए, सहज भाव से कुछ नहीं, सहज भाव से बुरा हो गया। 1 का हाल, धर्मराज की सजा भी उसके आगे फीकी, देख नहीं सकते थे लोग उसे। तो ये क्या था? पाप का फल, पुण्य का बल नहीं था। उन 2 के साथ पुण्य का बल था, दूसरी आत्माओं को सुख दिया था। तो हमारे पास यज्ञ में पुण्य कर्म करने के अवसर सबसे ज्यादा हैं। अटेंशन देंगे आप सभी, यज्ञ में हम एक संगठन में रहते हैं, हमारे पास पुण्य कर्म करने के अवसर सबसे ज्यादा हैं या नहीं? जितना चाहें दूसरों को सुख दें, जितना चाहें अच्छे वचन बोलकर दूसरों को खुशी प्रदान करें, जितना चाहें वाइब्रेशंस फैलाकर दूसरों के दुख समाप्त करें, जितना चाहें यज्ञ सेवा करके जन्म जन्म का भाग्य निर्माण करें। यज्ञ सेवा बहुत बड़ा पुण्य। जो यज्ञ सेवा नहीं कर रहे हैं उन्हें कष्ट होगा, क्योंकि वो भगवान के यज्ञ में मदद नहीं कर रहे, तो ईश्वरीय मदद उन्हें प्राप्त होगी नहीं। चाहे वो कितने भी खुश रहे आज, उन्हें ईश्वरीय मदद समय पर प्राप्त नहीं होगी। तो ये हमारे साथ बल हैं, इनको हम बढ़ाएं। और जो एक प्रसिद्ध बात है बाबा की, कौन हूं मैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। इसका बहुत अभ्यास करने से जो बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं वो जागृत रहेंगी, शक्तियां बढ़ती जाएंगी। किसी के पास किसी भी शक्ति की कमी हो, वो संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सहन शक्ति है। केवल संकल्प करें तो सहन शक्ति काम करने लगेगी। मेरे पास सभी समस्याओं को सामना करने की शक्ति है, काम करने लगेगी। तो समस्याओं से हम घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। अपनी शक्ति को इस तरह इमर्ज करो। बाबा कहते हैं शक्तियों को काम में लगाओ। काम में लगाने का तरीका है, बस हम याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास ये शक्ति है। और फाइनली हमारी शक्तियां बढ़ती हैं योग अभ्यास से। योग अभ्यास में भी कौन सा योग? पावरफुल, ज्वालामुखी, बीज रूप, जिसमें हम बाबा के पास हों। संकल्प ज्यादा नहीं, केवल बाबा। स्थित हो जाए, इसको कहते हैं स्थित होना। बुद्धि स्थिर हो गई तो इसको कहते हैं स्थिति, स्थित हो जाना। तो बुद्धि हमारी एक पर स्थिर हो जाए, यह है पावरफुल योग। इससे सर्वशक्तिवान की शक्तियां हम में आने लगेंगी। मनन के साथ ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कुछ सुंदर पॉइंट्स अवश्य हों जो हमें व्यर्थ से मुक्त रखने में मदद करें। जैसे हम संगठन में रहते हैं, कई बातें हमारे सामने आ सकती हैं, पर अगर हम याद रखें अंतिम विजय सत्य की ही होगी, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं बाबा है। देर लग सकती है, हमें दिखाई दे सकता है कि झूठ वालों की विजय हो रही है, पर झूठ की विजय होगी नहीं, दिखाई देगा। याद रखें बाबा की पॉइंट, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। देखो भगवान ने कहा है, बादल हटेंगे सत्य का सूर्य प्रकट होगा। सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। सत्य को सिद्ध करना माना जिद, ये भगवान के महावाक्य हैं। तो ऐसी पॉइंट्स जब हमारे पास रहेंगी और हमें पता है कि हम सत्य हैं, तो हम विचलित नहीं होंगे। कोई बड़े छोटे कुछ भी करते रहे हमारे विरुद्ध, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमें पता है ना हम सत्य हैं, तो विचलित नहीं होंगे। हमें याद रहेगा कि सत्य को सहन तो करना ही पड़ता है। सत्य का मार्ग कांटों का मार्ग भी हो सकता है, झूठ का मार्ग आजकल फूलों का मार्ग है। झूठे सुखी है ना, लोग प्रश्न ही करते रहते हैं। पापी लोग बड़े मौज मना रहे हैं, ईमानदार लोग भूखे बैठे हैं। कैसा भगवान का न्याय है? भगवान का न्याय नहीं, ये कर्मों की गति है। तो हम सभी ऐसे सुंदर ज्ञान के महावाक्यों को अपने पास रखें, लिख के रखें, उन्हें पढ़ते रहें। बहुत अच्छी अच्छी बातें अव्यक्त मुरलियों से हमें मिलती हैं, जैसे गल की मुरली की ये बातें थी, सर्वशक्ति संपन्न होंगे, प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी, पानी नहीं होगा, हम जाएंगे नहाने पानी आ जाएगा। बहुतों के अनुभव है, जो ऐसी आत्मा जाएगी पानी की टंकी भरी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। अनुभव है लोगों के, कड़वे मीठे दोनों अनुभव हैं सबके। तो हम अब भी देखते हैं कि जैसी जिसकी स्थिति वैसा ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। स्थिति अच्छी नहीं तो डॉक्टर भी समय पे नहीं मिलता, कहेगा आज छुट्टी पर है, तीन दिन के बाद आना, होगा या नहीं? और स्थिति अच्छी है तो जाते ही डॉक्टर मिल जाएगा, आओ पहले तुम ही आ जाओ। सब स्थिति का खेल है, इसलिए स्थिति नहीं बिगाड़नी है। स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए ज्ञान योग ठीक ठीक चालू रखना है जीवन में, अलबेले नहीं होना है। तो आगे चलकर हम सबको बहुत सुख मिलेगा, और हमें ही सुख नहीं मिलेगा बल्कि हम क्या करेंगे, सुख बांटेंगे। महान आत्माओं का ये कर्तव्य होगा सुख बांटना। हमें अभी तक उस दृश्य का कोई अंदाजा नहीं, विनाश में क्या क्या होगा। इस संसार में हाहाकार के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे में महान आत्माओं की भूमिका बहुत जबरदस्त होगी, हम उसके लिए अपने को तैयार करेंगे। ओम शांति।